وما بني أنت من عندك سيدنا أنت من شلاك يا تكسرون بلتام جنة تسمى إشي دلوي سوي شيطان من أبشتم ستابتم جنة بوتلي سويام روبا قدام ومتاتي سلطان جنة جاي سلوشنا سيدنا بربو نتيان سيدوئي تقدادا بواس بغور هري كشنا هري كشنا كشنا كشنا
هري 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 رام هري رام 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 هري
سبھی تک ہم چرچا کر رہے تھے اس میں بھگوان نے انتیم شلوکوں میں ایسا کہا تھا کہ وہ نیچے سنیاسی مانا جاتا ہے جو نرنتر کیول کرشن کو پرسن کرنے کے لیے ہی کاریہ کرتا ہے اور گرو کے آدیش پر ستھیر ہے اور بھگوان اس بات پر بل دے رہے تھے کہ کرم کا سنیاس کشٹ دائی ہو سکتا ہے. اگر کوئی ویکتی کرم کرنا چھوڑ دے لیکن کرم کرنے کی اچھائیں جو ہے وہ اندر رہے گی تو کیا ہوگا؟ اب جیسے آپ کے کمپیوٹر میں پرنٹ کمانڈ ہوتا ہے لیکن پرنٹر نکال دیا تو پرنٹ کمانڈ جائے گا تو صحیح لیکن پرنٹ نہیں آئے گا. اس طرح سے ڈیزائر اندر رہے گی لیکن اس کا سپرفیشلی اس نے ساری اندریوں کو بند کر دی. بڑے بڑے ہمالے میں یوگی لوگ جو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھائے دب جاتی ہے, وہ صاف نہیں ہوتی ہے اور دبی ہوئی اچھا کبھی بھی والکینو کا روپ لے سکتی ہے. اس لیے کرم کا تیاگ کیول اسی ویکتی کے لیے سمبھو ہے جس ویکتی کا چیتنا شدھ ہوا ہے. تو پانچویں شلوک میں ہم نے آپ کو چرچا کیا تھا سنکشپ میں کہ جو جنانی ہوتے ہیں جو برہموادی ہوتے ہیں اس میں بھی ہم نے تین پرکار بتائے تھے. ایک تو جو پورن روپ سے تیاگ نہیں کرتے, دے ڈونٹ گیو فلی, پورا پورن روپ سے تیاگ نہیں کرتے, تھوڑا رکھتے ہیں اپنے پاس. جیسے آدھا تیاگ اور آدھا بھوگ اس طرح سے رکھتے ہیں. دوسرے پرکار کے ہوتے ہیں کہ جو وانتاسی ہوتے ہیں. وانتاسی کا ارتھ کیا بتایا تھا ہم نے آپ کو؟ نہیں, وانتاسی کا ارتھ
وومٹ کر دے.
ہاں, ایک بار جو سارا وومٹ کرے گا, سب کچھ وومٹ کر دے گا اور پھر ساری وومٹ کرنے کے بعد وہ سب کچھ پی جائے گا, اس کو وانتاسی بولتے ہیں. ارتھ وانتاسی ارتھات جس ویکتی نے ایک بار سب کچھ تیاگ دیا ہے لیکن پھر سے وہ ساری چیزوں کو گرہن کر لیتا ہے. کہیں ہوتے ہیں ایسے تیاگی لوگ جو لوگ بڑے مکتاتما سدھاتما بننے کا پریاس کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. کیا بولتے گجراتی میں کیا کہاوت ہے؟ لمبا وہ ٹوکو جائے مرے نہیں ماندو پڑے. اس کی سکتی نہیں ہے, وہ پریاس کرتا ہے اور ایسا سوچنے لگتا ہے کہ میں مکت ہو گیا لیکن بعد میں اس کے آکرشن اتنے تیور ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسے لوگ دھوبی کے کتے کی طرح ہو جاتے ہیں, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. سنسار میں اس کو کوئی رکھنے کا تیار ہے اور اس کا من ابھی آدھیاتمکتا میں نہیں ہے, ایسی حال ہو جاتے ہیں. کئی بار ایسے ہوتے ہیں, سنسار میں بھی کچھ آتا نہیں اس کو, मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ दो पैसा कमा भी नहीं सकता अपने ढंग से, और आध्यात्मिकता में भी रुचि नहीं है, तो बीच में लटक जाते हैं। और तीसरे प्रकार का मायावादी अत्यागी, जो ज्ञानी का हमने बात बताया था, वो करते क्या कि वो सब कुछ त्याग देते हैं, सब प्रकार की आसक्ति त्याग देते हैं, लेकिन उनके पास कोई पॉजिटिव आसक्ति रहती नहीं, कोई ऐसा कुछ रहता नहीं कि जिससे वो जुड़े रहे। जैसे एक चीज को पकड़ करके, जैसे रस्सी में, कई बार आपने देखा है सर्कस में कि वो एक रस्सी से पकड़ करके दूसरी रस्सी पकड़ता है, दूसरी रस्सी और तीसरी रस्सी, लेकिन एक रस्सी को तभी वो छोड़ेगा जब उसने दूसरी रस्सी को पकड़ी है, ढंग से पकड़ी है तब, नहीं तो नहीं। लेकिन इन लोग का क्या होता है, एक जो पहले वाली जो रस्सी है उसको तो छोड़ देते, लेकिन दूसरी पकड़ते ही नहीं, उनके पास रस्सी है ही नहीं दूसरी कोई सामने पकड़ने के लिए कोई रस्सी है ही नहीं, तो क्या होता है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। ये लोग अपने शुष्क जीवन से उब जाते हैं, उनके लिए जीवन बर्डन के रूप हो जाता है, लेकिन कृष्ण भक्तों के लिए ऐसा नहीं होता है। कृष्ण भक्तों के लिए क्या होता है कि एक साइड से डिटैचमेंट और एक साइड से अटैचमेंट, सीधा वो भौतिक चीजों का त्याग करते हैं, साथ साथ में आध्यात्मिक चीजों का स्वीकार करते, ग्रहण करते। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि एक समय ऐसा था कि आप चाय पीते थे या कोई ऐसी हमारी बुरी आदत थी, लेकिन वो कब वो बुरी आदत चली गई वो हमें नहीं पता पड़ा। उसका वो इतना सॉफ्टली, इतना साइलेंटली हो गया ये कि हमें पता ही नहीं पड़ा कि ये कैसे हुआ। तो इस तरह से कृष्ण भक्ति जो है वो पूर्ण रस से भरे हुई है, इसमें यहाँ पर कोई बोर्डन नहीं है, यहाँ पर कोई आप ऐसा नहीं है कि अभी क्या प्रभु वही सुबह से उठ के रोज सोलह माला जप करने का एक ही बात बार बार, वही रोज कीर्तन करो, रोज भगवत गीता पढ़ो, देयर इज नो बोर्डन इन दिस, क्योंकि पूर्ण आनंद से भरपूर है। भगवान गीता में कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये भक्ति का आचरण सुखपूर्वक किया जाता है। पांच रस, चार रस जो है मुख्य, उससे कृष्ण के साथ हम संबंधित है। हमने एग्जांपल दिया था आपको लास्ट टाइम कि जो कृष्ण के दास्य रस में थे, चित्रक पत्रक इत्यादि, वो दास्य लोग, दास लोग क्या करते थे, कृष्ण उठते कृष्ण का श्रृंगार करने में लगे जाते थे, कृष्ण का चामर धुलाना, ये करना वो करना, क्या सब प्रकार की सेवा में लग जाते थे, और बड़े प्रसन्न चीज रहते थे, हमेशा याद रखते सोचते थे, जैसा हनुमान वो हमेशा हमेशा सोचते रहते थे कि कब मुझे सेवा का अवसर मिलेगा, कब मुझे सेवा का अवसर मिलेगा, और हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे। फिर यशोदा माता वात्सल्य रस पे कृष्ण को छोड़ने जाते थे, तो वनों में छोड़ने जाते थे, तो यशोदा माता कृष्ण को वन में छोड़ने जाते थे, और बलराम को कहते थे इसको संभालना, इसको ध्यान रखना, इसको ये कहीं पत्थरों पर चलना शुरू करना दे या कांटे पे लगना जाए, इसको धूप में धूप से बचाना, अगर यमुना के पास से गुजर रहा हो तो उसको यमुना साइड चलने मत देना, उसको ऑपोजिट साइड चलने का बोलना, और थोड़ी थोड़ी देर पर किसी पेड़ के नीचे विश्राम करना, तो ऐसे कृष्णा के लिए यशोदा माता निरंतर वात्सल्य रस से भरपूर थे। निरंतर सोचते रहते थे कि किस तरह से मैं कृष्ण को लालन पालन करूं। और सख्य के विषय में जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे धेनुकासुर वकासुर, कृष्ण का एक बार ये भांडी रोन में गए थे लोग, लास्ट टाइम हम आपको अगासुर की बात बताई थी, तो अगासुर लोगों ने किसी ने कहा तो सांप लग रहा है, कोई दूसरे कहा कि ना ना थोड़ी सांप कहाँ लग रहा है, तो देखो गुफा लग रही है कहीं, ये सांप का मुंह थोड़ी है तो गुफा है, दांत बड़े बड़े, बदबू आ रही है अंदर से मुंह से अंदर से, तो जैसे कहीं बहुत सारी मछली खाकर बैठा है कोई सांप, ऐसे सांप ही था अगासुर तो अजगरी था। दूसरे लड़कों ने कहा नहीं ये बदबू नहीं, ये तो आप पीछे देखो उसकी आंखें जल रही थी अग्नि की तरह, तो उसके देखो वहां पर जो जंगल में आग लगी हुई है वहां पर बहुत सारे पशु मर गए होंगे, उसकी बदबू आ रही है। तो इस तरह से अगर किसी ने कहा कि अगर ये सांप निकला तो किसी दूसरे एक मित्र ने कहा अरे सांप निकल गया तो क्या बात है, कृष्ण रोज एक असुर को मार दे, ये कहा एक और असुर को मार दे। धेनुका असुर के विषय में भी ऐसा हुआ था, बोले खाने का इच्छा हुआ है ताल का, क्या करे ताल का फल क्या करे, और कृष्ण का चलो वहां पर तो असुर रहता है धेनु का असुर, हाँ तो दूसरे में तो उसमें क्या हो गया, कृष्ण भाई आपके लिए नई बात थोड़ी है, तो असुर को मारना तो रोज का काम है इनका, तो अगर असुर आएगा तो मार लेंगे उसमें क्या है। ऐसे भांडी रोन में एक बार ऐसा हुआ था, भांडी रोन में दव लगा हुआ था, दवाना लगा था, वो आग लगी हुई थी, तो सारी गई ये सब घबरा गई और सब मित्र वित्र उनके बाल सखा सब बहुत परेशान हो गए, चिंतित हो गए, सब गई कृष्ण की ओर देखने लगी, बाल बाल भी कृष्ण की ओर देख रक्षा करो कृष्ण कृष्ण बचाओ कृष्ण बचाओ। तो उनके साथ वो मधुमंगल भी था जो बलराम का ब्राह्मण का बेटा था और बड़ा ही चौधरी था, बहुत मस्ती करता था, कृष्ण का मित्र था, बहुत स्पेशल फ्रेंड बटू द्विजयराज कहते ना, जय जय कृष्ण सखा बटू द्विजयराज, तो बटू था। तो कृष्ण ने कहा बटू ने कहा कुछ करो, ये इतना आग लग गया है सब लोग, हम सब मर जाएंगे स्वाहा हो जाएंगे, क्या करो बचाओ हम सबको। तो कृष्ण ने कहा एक ऑप्शन है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन क्या, तुम सब अपनी अपनी आंखें बंद कर दो तो मैं तुम्हें इस दावन से बचा सकता हूँ। तो मधुमंगल ने कहा अभी जब ये आंखें खुली है तब कुछ नहीं हो रहा है, आंखें बंद करने से थोड़ी बच पाएंगे। तो कृष्ण के तो करो फिर वेट करो, जब तक सब कुछ स्वाहा हो जाएगा तब तक वेट करो। बोले नहीं 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 बंद करते आंखें। तो फिर जब सब ने अपनी अपनी आंखें बंद कर दी और कृष्ण ने दावानल को पूरे पी गए, पान कर लिया। तो ये कृष्ण भक्ति में ये सब रस छिपे हुए हैं अलग अलग प्रकार का, जिससे भक्त को निरंतर आनंद प्राप्त होता है और उसको भौतिक चीजों का कोई आकर्षण नहीं रहता। लेकिन कोई उत्तम चीज प्राप्त करने के लिए निकृष्ट चीज जो है या तो अपने आप छूट जाएगी या तो हमें उसको उसका उसके प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। जैसे सनातन गोस्वामी के पास स्वीटी ने भेजा था एक व्यक्ति को, सनातन गोस्वामी के पास, शिवजी और सनातन गोस्वामी की अच्छी मित्रता है, तो भेजा था एक व्यक्ति ने, क्या चाहिए तो सबसे उत्तम सबसे मूल्यवान वस्तु मुझे दीजिए। शिवजी ने कहा वो सनातन के पास जाओ, उसके पास है ये सब सबसे मूल्यवान वस्तु। तो सनातन गोस्वामी के पास आया वो, उसने कहा ये सत्य घटना है। तो व्यक्ति ने उसने कहा कि शिवजी ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, तो कहा कि आप मुझे देंगे, आप मुझे दे सकते हो। तो सनातन गोस्वामी तो जप कर रहे थे, सनातन गोस्वामी ऐसे उनका नेचर बहुत दयालु है, सनातन गोस्वामी का. इज लाइक अ फादरली नेचर उनका ऑलवेज. तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो सामने कूड़ा पड़ा है, कचरा, कचरे का ढेर है. उस कचरे के ढेर में एक परस पत्थर, टचस्टोन. चिंतामणि बोलते क्या बोलते, टचस्टोन, परस पत्थर, परसमणि. तो बोले परसमणि है, उसको जिस चीज से छूते है वो सोना हो जाती है. तो तुम वो परस पत्थर ले आओ, वो सबसे कीमती वस्तु है. इतना खुश हो गया, नाचने लगा, कूदने लगा, दौड़ कर भाग गया. वहां पर गया, देखा परस पत्थर, वाह वाह, सबसे मूल्यवान वस्तु मेरे पास आ गई. घर गया, घर पहुंचा, पहुंचते पहुंचते मन में विचार आया उसको. वो सोच रहा था, आज मेरे पास संसार की सबसे कीमती वस्तु आ गई, मैं ये धन कमाऊंगा, ये चीज को ये प्राप्त करूंगा. अब मुझे पुराने वस्त्र नहीं पहनने पड़ेंगे, नए यू नो आलीशान मकान में रहूंगा, सुंदर आभूषण दूंगा मेरी पत्नी को गिफ्ट में, और ये सब सोचने लगा, प्लान बनाने लगा. लेकिन बाद में सोचा उसने, ये इतना महत्वपूर्ण अगर कीमती वस्तु है तो सनातन गोस्वामी उसने कचरे के ढेर में क्यों पड़ा था ये, और सनातन गोस्वामी क्यों एक छोटा सा कमंडलू है वो कौपिन पहन करके जप कर रहे थे, ये क्या है, ये कुछ समझा नहीं मैं. तो पहुंच गए वापिस सनातन गोस्वामी के पास. आप तो बड़े विद्वान, बड़े संत पुरुष दिखते हो, आपके हृदय में तो किसी के प्रति द्वेष, कपट, ईर्ष्या ऐसा लगता तो नहीं कि आपके हृदय में कोई द्वेष हो, किसी के प्रति ईर्ष्या हो या कपट हो. तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि क्या बात हुआ, तुमने जो मांगा मैंने दे तो दिया, और तो मैंने तो आपको सबसे मूल्यवान वस्तु मांगी थी, तो बोले दिया तो सही. तो बोले अगर ये सबसे मूल्यवान वस्तु है तो ये कचरे के ढेर के पास क्या कर रही थी. इसका अर्थ है कि इसके इससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु आपके पास है जो आपने मुझे दिया नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो सनातन गोस्वामी हंसने लगे. सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने कहा, लेकिन तुम्हें जो मूल्यवान चीज चाहिए वो तो है, ये इसमें ये सब चीज है जो तुम चाहते हो. तो बोले नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कुछ है. तो कहा कि मेरे पास तो कुछ है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसको वापस वहां पर डालना पड़ेगा. इसको उधर जाके फिर से कचरे के ढेर में डालना पड़ेगा. तो एक बार वो सोचने लगा, बोले कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ये बड़ी मुश्किल से परस पत्थर हाथ में आया और फेंक दूंगा उधर जा करके, और वहां छू हो गया, और इधर ये कुछ देंगे नहीं तो मेरा तो सब साफ हो जाएगा. दूसरा दिन गोस्वामी कहा कि तुम चाहते हो तो पहले फेंक के आओ, फिर मैं तुम्हें दूंगा. तो कृष्ण भक्ति में ऐसा ही है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति से उत्तम कोई सुख नहीं है. ये नहीं सोचना कि शायद मटेरियल वर्ल्ड में भी है, कुछ तो है, शायद संसार में सुख भोगने का पागल थोड़ी है. इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग लगे हुए भौतिक भोग भोगने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए, तो क्या सबके सब मूर्ख है, मैं अकेला ही बुद्धिशाली हूं? ना ना ना, शायद वो लोग भी कुछ तो है. तब फिर आपको परस पत्थर से काम चलाना पड़ेगा, फिर आपको वो चीज नहीं मिल सकती. लेकिन ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण के चरण में मैं पूर्ण रूप से शरणागत होने के पश्चात ऐसी कोई चीज नहीं है संसार में इससे उत्तम कि जो मुझे प्राप्त करने की शेष रहेगी. जब सनातन गोस्वामी ने वो पत्थर फेंक के वापिस आया वो व्यक्ति, तो फिर सनातन गोस्वामी ने उसको कृष्ण प्रेम दिया, तब उसको हरि नाम दिया. ये हरि नाम का जप करो, ये है सबसे उत्तम वस्तु संसार की. आप समझ रहे कि हरि नाम तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, और इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता. ना इसके सामने कोई सिद्धि काम करेगी, अणिमा लगीमा ईशिता वशिता के प्रकार में ये कोई सिद्धि काम नहीं. इससे ये तो सब बहुत तुच्छ चीज है, ना इससे कोई भुक्ति, ना स्वर्ग के ऐश्वर्य, ये सब कुछ काम नहीं करेगा। इसकी तो तुलना भी नहीं की जा सकती हरि नाम के साथ। तो इस तरह से संसार में जो कष्ट से भरा हुआ है मटेरियल वर्ल्ड, उससे भक्तों के जीवन बिल्कुल अलग होता है। मटेरियल वर्ल्ड में तो केवल पेन ही पेन है, एवरीवेयर इज पेन। मैं क्या एग्जांपल दिया था ना, वो कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने, एक व्यक्ति अपने चौथी पत्नी के साथ तीसरी बार शादी कर रहा था, जिसने दूसरी पत्नी को तीन बार डिवोर्स दिया था। आई मीन समथिंग लाइक दैट आई सेड, मैं कहीं पढ़ा था कुछ। तो ये है विदेशों में, ये होता है आजकल। आई मीन ये तो इंडिया में भी आजकल ये होता है, उसको खुद को ही नहीं पता कि किसके साथ शादी किया और किसके साथ डिवोर्स किया, इसको खुद को ही नहीं पता। तो मटेरियल वर्ल्ड में रिलेशंस के नाम पे केवल मिजरीज है। समाज में ऐसा दिखता है, लोग आर्टिफिशियल ट्राई करते हैं सुखी होने के लिए। अब महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, ग्लैमर वर्ल्ड में रहना, ये सब ऐसा लगता है आकर्षण, लेकिन ये केवल जैसे आप कचरे का ढेर पड़ा और उसके ऊपर कारपेट डाल दो, किसी को दिखेगा नहीं, ऐसी सिचुएशन है। ये सबका अगर सबके अंदर के जीवन के अंदर झांकोगे, सब एक नंबर के दुखी है, एक नंबर के दुखी, लेकिन दिखावा कर रहे सुखी होने का। तो मटेरियल वर्ल्ड में ये जो पेन होता है, और कृष्ण भक्ति में रसमय है, आनंद से भरा हुआ है, तो इसलिए भक्त को ये सब समस्या नहीं, प्रॉब्लम आती कि उसको डिटैच करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। सो इस तरह से पांचवें श्लोक का चर्चा हमने किया था लास्ट वीक। अभी छठे श्लोक में इसको कंटिन्यू करते हैं भगवान, कि दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों पाथ का, तो उसका एक एक कौन सा ज्यादा व्यवहारू है और कौन सा ज्यादा सफल है, उसकी चर्चा करते हैं। पढ़िए छह नंबर।
भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है।
वो कितना भी प्रयास कर ले, टाटा बिरला अंबानी बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता है। ये है भोगवादी व्यक्ति, और वो लोग जो लोग सब कुछ त्याग देते हैं फिर लेकिन भक्ति नहीं है उनके पास। एक तो भोगी था, ये कर्मी के बाद होता है ये ज्ञानी। ज्ञानी का क्या है, वो सब कुछ त्यागता है लेकिन उसके पास क्या बोलते हैं उसको, नोत्पाद यते यदि रतिम स्वयं वही केवल
धर्म
स्वामी विश्व से न कथा सुय, और सब कुछ अच्छे से पालन करते हैं। और एक जगह ब्रह्मा जी ना फर्स्ट कैंटो में एक श्लोक है कि नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जित। नैष्कर्म्यम मीन्स सब कर्मों का त्याग, ये सब कुछ त्याग देने के बाद नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जित। अच्युत भगवान के प्रति जो प्रेम है उससे मुक्त है, अर्थात वर्जित है, उससे रहित है। न शोभते, वो लंबा नहीं रहता, न शोभते उसका कोई असर नहीं है, न शोभते उसका वो शोभा नहीं देता। इसलिए जब तक निष्कर्म में प्राप्त हो लेकिन रति प्राप्त नहीं भगवान के प्रति, ही कैन नॉट बी हैप्पी। लेकिन अ थॉटफुल पर्सन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, विचारवान व्यक्ति केवल जुड़ा है कृष्ण भक्ति में, अभी उसने सफलता नहीं प्राप्त की है, फिर भी वो सुखी हो जाता है। जैसे आप कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, तो यद्यपि हम अभी साधक है, हम सिद्ध नहीं, हमने सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं की है, लेकिन फिर भी हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सुखमय हो गया है। भौतिकतावादी लोग जो जिस तरह से हमेशा रोते रहते हैं, लेकिन तो हमें तो पता है कि वास्तविकता क्या है, इसलिए हम दुखी नहीं होते। तो आने वाले श्लोकों में कृष्ण निष्काम कर्म योग का पालन कैसे करना, इसकी चर्चा करेंगे। तो आप छठे श्लोक को जस्ट सिंपली कुछ प्रश्न पूछना चाहते छठे श्लोक को लेकर के। क्या आप ये मानते हो कि जो ड्राई रिनाउंसिएशन है, अर्थात शुष्क तत्वज्ञान, शुष्क त्याग, कर्म का त्याग, ये दुख का कारण हो सकता है? अगर आप ये मानते हो तो आप अपने विचार इसके ऊपर प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे है? अगर आप मानते तो हो शायद थियोरेटिकली, लेकिन ये कैसे है? प्रश्न है कि जो शुष्क त्याग है कर्मों का, वो दुखों का कारण बनेगा, क्यों होगा ऐसा? क्या आप मानते हो इस बात को? यस, तो क्यों? जस्ट रेज योर हैंड एंड शेयर योर ओपिनियन।
जैसे कि कोई भी भौतिक कामना के लिए हम लोग कर्म करते, मतलब प्रश्न है कि शुष्क कर्म का त्याग दुख से भरपूर है क्यों? तो क्योंकि जैसे कि मुझे अभी कोई गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है कुछ, तो इसके लिए मैं सोचूंगी इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगी। वो बोलने के बाद मुझे थोड़े दिन उसको अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद ऐसा, मतलब ये एहसास होगा नहीं ये नहीं, इससे बेटर ये है, मुझे ये प्राप्त करना चाहिए। जब थोड़े दिन के लिए वो होता है, सुख मिलता है, आनंद करते हैं, फिर बाद में वापस दुख में चले जाते हैं, नहीं मुझे अब ये मिलना है, तो हम इसके पीछे भागने लगते हैं।
ओके, और एक प्रश्न ये है मन में, क्या भक्त के रूप में कभी हमें ऐसा लगा, एज ए डिवोटी, भक्त के रूप में, कि हमारा जो त्याग है वो दुख का कारण बना है, ऐसा लगा कभी? ऐसा लगा या फिर इससे विपरीत लगा? अगर ऐसा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा?
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है, तो ये दुख का कारण इसलिए होता है क्योंकि जैसे जबरदस्ती अगर हम इंद्रियों को संयमित करते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर जैसे विषय अभिनिवर्तन ते निराहरस देहि 259 में भगवान ने बताया है कि जब तक हमें हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, इंद्रियों को कुछ ना कुछ प्रवृत्ति तो चाहिए, वरना मन को वश में करना और मेडिटेशन और वो सब, ये सब मतलब नॉनसेंस है, अभी के ये युग में पॉसिबल ही नहीं है। तो और जो भगवान ने पूरे सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में वही बताया है कि कैसे इंद्रिया विषयों में फिर लिप्त होती है मन से लेकर, और फिर वो धीरे धीरे बुद्धि तक पहुंचती है, और फिर पूरा भव सागर में हम गिर जाते हैं। तो बिकॉज हमारी इंद्रिया अतृप्त रहती है, इसलिए हमें हम दुखी रहते हैं, अगर शुष्क तत्व ज्ञानी है तो। और भक्तों में क्योंकि इंद्रिया, क्योंकि हम अगर सेवा में इतने रथ है, बहुत सारी चीजें हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो हर एक इंद्रिया, जैसे अमरीश महाराज का एग्जाम्पल है, अगर हम हर एक इंद्रिया का कुछ ना कुछ एंगेजमेंट दे तो मतलब दुखी होने का सोचने का ऐसा टाइम ही नहीं है।
किसी को ऐसा कभी हुआ है कि हाँ बोलिए,
ऐसे त्याग कर देते हैं और उसमें अगर पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ था मन और कुछ इच्छा रह जाती है तो उसमें हम लोग को दुख होगा। जैसे कि अगर कोई त्याग कर देता है, किसी भी अपना त्याग कर संन्यास ले लिया और कुछ इच्छा उसके मन में है, जैसे उसको मिठाई खाने की इच्छा है, तो अगर वो मिठाई उसके सामने आती है तो उसका मन उसमें आसक्त हो सकता है। अगर जो कृष्ण भक्त है उसको अगर इच्छा है तो वो मिठाई खा सकता है भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें उसको आनंद आएगा और उसमें और उसको दुख रहेगा कि मैंने उसको क्यों क्यों त्यागा।
सही बात। हाँ बोलिए।
जैसे कोई भी चीज का त्याग करते हैं लेकिन इंद्रिय और मन है वो उसके प्रति आसक्त तो होगी ही होगी, तो ऐसा है कि अगर जब तक हम सब लोग जो भी कुछ पाना चाहते हैं तो आनंद के लिए पाना चाहता है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संसार दुखालयम है और अगर आनंद चाहिए तो जो सचित आनंद है कृष्ण, अगर जब तक हम उन्हें सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तब तक हमें आनंद मिलने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मेन रूट है अगर भगवान को सेटिस्फाइड करते हैं तो ही आनंद मिल सकता है, भगवान को हटा के अगर हम खुद तृप्त होना चाहते तो कभी पॉसिबिल नहीं है।
कभी ऐसा लगा भक्तों को किसी को कि मैं यहाँ पर इसको मंदिर जा रहा हूँ संडे फिश में और ये लोग है ना पकवान में खा रहे, ओनेस्ट में खा रहे, मोचा में खा रहे, कहाँ इधर यू नो पार्टीज मना रहे और ये 31st को मैं यहाँ पर जाहिरस पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ या फिर यू नो बैठ करके कीर्तन कर रहा हूँ और ये लोग पार्टी मना रहे, शायद उन लोग पुण्यशाली होंगे, मैं इतना पुण्यशाली नहीं हूँ, ये जो BMW ऑडी में घूम रहे और मैं रिक्शा साइकिल चला के जा रहा हूँ। तो ऐसा कभी कई बार भक्तों को हो सकता है शायद ऐसा कि मुझे तो अरे आपको पता है एक बहुत सुंदर नया मूवी आया है, अच्छा अरे क्या केमिस्ट्री है हीरो हीरोइन की, सच ए नाइस मूवी, इतना अच्छा है। और तो कई बार वो नया भक्त है कमजोर भक्त का वो सोचने लगा अच्छा इतना अच्छा है क्या स्टोरी क्या स्टोरी क्या अच्छा ऐसा है हाँ मूवी में कौन से थिएटर में नहीं हम तो नहीं जा सकते हम तो भक्त है ना हम तो कृष्ण भक्त है हम तो नहीं जा सकते अभी एक बार जाने में कुछ नहीं होता है जा सकते कुछ नहीं है पाप थोड़ी कर रहे हैं 3 घंटा बस मूवी देख के वापिस फिर तुम जाना मंदिर जाके माला का जप कर लेना 2 माला याद कर ले तो नए जब भक्त भक्ति में नए नए होते तो ऐसा विचार शायद मन में आ सकता है सो ऑफ कोर्स इस बात को शेयर करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हाँ रोहित जब मैं नया नया जुड़ा था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं जनरलाइज रूप से बता रहा हूँ कि जनरली हो सकता है ऐसा शुरू शुरू में कि मुझे जो नहीं है लोग चले जाते हैं सब ये आनंद उपभोग करते हैं आउटिंग करने के लिए चले जाते हैं ये करते वो करते, हमें तो वही रोज सुबह जाओ मंदिर जाओ डिस्ट्रीब्यूशन करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो जप करो कीर्तन करो सेवा करो, लाइफ में कुछ है ही नहीं। इट मे हैपन, ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारी भक्ति मैकेनिकली हो रही है और हमारा जो आकर्षण है भौतिक चीजों के प्रति वो आकर्षण अभी भी बना पड़ा है, लेकिन इसमें भी कोई नुकसान नहीं है, दवाई अगर कड़वी भी लगे फिर भी उसको लेने से फायदा ही होने वाला है, रोग चला जाएगा। तो इसलिए आप शेयर ना करें लेकिन आप अंदर से सोच सकते हो मन में कि शायद आपके शुरुआत के दिनों में या शायद अभी भी हो सकता है ऐसा कि मुझे आकर्षण है उन चीजों के प्रति जो अब मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं जानता हूं ये गलत है। तो इसका मूल कारण क्या है, इसका मूल कारण यह है कि हम अभी भी कृष्ण भक्ति के जो रस है उसको समझ नहीं पाए, ये प्रॉब्लम है। सो अभी नेक्स्ट श्लोकों में निष्काम कर, हाँ बोलिए।
इसमें थोड़ा एक ये है कि जब जैसे शुष्क सुख के पीछे हम तो नहीं भागते हैं बट कभी भी हम हमारे समाज में मतलब कि रिलेटिव्स वगैरह उनके यहाँ जाते हैं तो हमारे कुछ मतलब सारे नियम होते हैं, हमें ये नहीं खाते वो नहीं खाते ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना, अगर उनके साथ शेयर करते हैं तो वो लोग जल्दी एक्सेप्ट करते भी नहीं, मानते भी नहीं, और उल्टा अपने को कुछ मतलब गलत ठहराने का प्रयास करते, तो वो सिचुएशन हैंडल करना बहुत ही टफ होती है।
बेस्ट ऑप्शन है कि शेयर ही मत करो,
फिर वहां जाने से मतलब छूट भी नहीं सकते, जाना ही पड़ता है, और जाने के बाद फिर अगर हम नहीं खाए कुछ भी तो भी उनको प्रॉब्लम्स वगैरह होती है।
उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो कि आपको समोसा कम पसंद है और कचौरी ज्यादा पसंद है, गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है और रसगुल्ले कम पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप ये सबको थोड़ी बताते हो कि आपको मुझे ये ज्यादा पसंद है और ये कम पसंद है, राइट? आप क्या कहते हो अगर कोई आपको समोसा या कचौरी दो ऑप्शन देते, तो आप क्या कहते हो? मुझे कचौरी दे दो, राइट? फॉर एग्जाम्पल। तो कहने का अर्थ है कि जब आप उन व्यक्तियों से मिलो, उन लोगों से मिलो कि जिन लोग को श्रद्धा नहीं है, जो शायद उपहास कर सकते हैं, या जो लोग आपको यू नो आपके गुरु बनकर आपको आदेश देंगे, शिक्षाएं देंगे, उपदेश देंगे, तो उन लोगों के साथ अपनी पर्सनल चॉइसेस को शेयर मत करो कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है। आप जब उनके साथ जाते हो तो क्या एक्सपर्ट ड्रामा स्टेज के ऊपर आप शेयर करते हो ना, तो उस समय आपको उस पर्टिकुलर चीजों को स्वीकार करना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है। ओ, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये चीज मटेरियली प्राप्त किया, आपके रिश्तेदार है समाज के हो, तो जो आपको प्रसन्न होना पड़ता है, नहीं अंदर से कुछ प्रसन्नता नहीं है, लेकिन प्रसन्न हो, अच्छा आपको इतना अच्छा प्राप्त हो, इस काइंड ऑफ ड्रामा। लेकिन अंदर से भक्त को कुछ नहीं होता, उसको पता है मूर्ख है, पागल है, क्या करे, अज्ञानी है, इसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसके लिए यही जीवन का सुख है। अब मैं उसको ये कहूंगा कि क्या मूर्ख है, तो ऐसी चीजों में फंसा पड़ा है, तो उसको बुरा लगेगा। तो इससे बेटर है कि बच्चा है ना अभी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सो इसलिए जिस स्थिति में जाओ उस स्थिति के अनुसार चेक करो कि इसमें आपको किस प्रकार की एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं कि कोई श्रद्धालु मिल गया उसमें, रिश्तेदारों में भी, तो उसको उपदेश देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका वीक पॉइंट देख लो और उस वीक पॉइंट को सीधा पिंच करके बताओ, देखो फंस गए ना तुम, हरि नाम जप करो। तो इस तरह से अपने आपको शायद एक्टिंग करना पड़े, जरूरी नहीं कि आप हर बार ड्रामा करो, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब करना है हमारे सिद्धांतों को संभालने के लिए, बस और कोई कारण नहीं है, हमारी भक्ति को कोई डिस्टर्बेंस ना आए इसके लिए। यस,
मैं जब नया नया जुड़ा था तब मेरे साले की शादी थी, शादी के में क्या खाना था, साले की शादी में मेरे साले को मैंने बोला मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, तो बोले अभी खा ले चलेगा, मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगा, तो उसने अलग से मेरे लिए घर पे खाना बनाया।
हो सकता है, हो सकता है ऐसा, दैट्स वेरी मच, पर इसलिए
मैं नहीं खाऊंगा,
इसलिए ये सब करना पड़ता है। कहीं जैसे अभी दो दिन पहले मेरे पिताजी गए थे तो कहीं दूर राजकोट पिछली शादी में, अब कोई बंदा सुबह से 6 बजे से निकला है, कुछ फ्रूट वगैरह तो साथ में ले जाते हैं, लेकिन अभी वहां पर जाने के बाद पता पड़े यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप खा सको, तो क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी डिमांड थोड़ी कहेंगे भाई इतना दूर से बुला तो कुछ खिलाते भी नहीं, क्या है ये। लेकिन कुछ नहीं, ठीक है, एडजस्ट कर लो, सामने वाले को आप बात को छेड़ोगे तो बहस होएगी, बात को छेड़ोगे नहीं तो बहस नहीं होगी ना, तो फिर बहस होगी तो आपको दुख होगा क्योंकि वो आपकी बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए हमें इन चीजों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारी कृष्ण भक्ति व्यवस्थित हो, बस यही हमारा उद्देश्य है। So, yes.
अगर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी शादी में जाए लेकिन वहाँ खाए नहीं, बाहर जाके कुछ फ्रूट ऐसा ही कुछ खा सकते हैं,
हाँ, कोई पूछे
बताना भी नहीं है कि मैंने प्रसाद लिया नहीं,
हाँ, कोई पूछे खाया
बाहर फ्रूट या ऐसा कुछ खा सकते,
परमानेंटली वहाँ मतलब रहना पड़ता है ना, कभी कभी कहीं जगह पे ऐसा नहीं कि भाई चलो यहाँ जाके एक दो घंटे की बात हो तो अपना कर नहीं
सकते,
बट 8-10 दिन के लिए अगर वही रुकना जरूरी भी है तो फिर बहुत प्रॉब्लम,
तो फिर आपको माइंड को क्लियर करना पड़ेगा 8-10 दिन के लिए कैसे रहना है,
बहुत प्रॉब्लम होती है।
सही बात है, इसलिए जनरली भक्त लोग क्या करते हैं कि इस सिस्टम को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कम करते जाते हैं। 10 दिन का फिर 5 दिन हो जाता है, 5 दिन का फिर 3 दिन हो जाता है, फिर धीरे धीरे 1 दिन हो जाता है, और फिर सुबह जाम के शाम को वापिस। ये धीरे धीरे हो सकता है, एकदम से नहीं हो सकता है, धीरे धीरे हो सकता है ऐसा, क्योंकि पता है कि भाई जब जाकर के प्रॉब्लम फेस करनी है तो फिर क्यों जाए। लेकिन कुछ कई बार होता है ऐसा कि यू नो हाँ आपका फैमिली प्रेशर है या तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, उसमें सहन करना पड़ेगा, फिर आपको वो श्लोक याद करना पड़ेगा, तरोरपि सहिष्णुता। वृक्ष से भी अधिक सहनशील होता है भक्त, वो श्लोक याद करना पड़ेगा।
मेरा जो साला है तो वो ऐसे फाइनेंशियली बहुत वेल सेटल है, तो ज्यादातर उनके फैमिली में और उनका पार्टनर में सब रिलेटिव से है, तो बर्थडे महीने में 10-12 बर्थडे आ जाता है, और सभी बर्थडे वो लोग बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं। मेरे वहां तो मैं घर पे कोशिश करता हूँ कि घर पे प्रसाद बनाए, कीर्तन करें, लेकिन उनको पसंद नहीं आता है तो बाहर ही ले जाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, लहसुन प्याज बिना का मंगवाते हैं और भगवान के चरणों में जो तुलसी वो ले जाते हैं वो डाल देते हैं। लास्ट टाइम अभी 2-3 दिन पहले गया तो एक बार खा लो कि इसमें क्या है, ऐसा खाने में क्या मजा है। तो अभी पिछले कुछ टाइम से तो हम लोग तो नहीं खाते, लेकिन वो हमारा खाना चालू कर दिया, थोड़ा नाम का अच्छा लगता है ऐसा है।
सही बात, तो ये हो सकता है, लेकिन हमारा एक प्रयास रहना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि रिश्तेदारों को संभालने में हमारी पूरी
मैं खुद बना लेती हूँ, हंसती है ऐसा, कभी जाना पड़ता है तो फिर मैं अपने हम तीनों का हम खुद ही बना लेती हूँ।
सो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी वही परसों का जब गए थे तभी उनका ऐसा था कि रात को शादी लेट होने वाली थी शाम को, और उनको रुकना पड़े ऐसा सिचुएशन था, और फिर रात को मिडनाइट 10-11 बजे ड्राइव करके, कोई दूसरा कोई ड्राइव करेगा, लेकिन रात को अंधेरे में 3-4 घंटा दूर से आना ड्राइव करके। तो फिर मैं कल उनको बता रहा था, मैं कहा हम क्यों रिस्क ले, किसके लिए रिस्क ले, हमारी कृष्ण भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है इन सब कार्यों से। तो इसलिए ऑफकोर्स वो तो कुछ वेट नहीं किया, वो तो तुरंत बस पकड़ के आ गए वापस। बट द पॉइंट इज कि हमें देखना चाहिए कि हम कितने परसेंट रिस्क ले सकते हैं बस, हमारी कृष्ण भक्ति का नुकसान करने नहीं बैठे हम, लेकिन साथ साथ में हम बाह्य व्यवहार भी दिखा रहे। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम इसका ऐसा नहीं कि हम अपनी कृष्ण भक्ति को दांव पे लगा दें, इस प्रकार से हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो निष्काम कर्मयोग के विषय में भी आने वाले श्लोकों में, 5 श्लोकों में निष्काम कर्मयोग की बात होने वाली है। भगवान बताते हैं निष्काम कर्मयोग किस तरह से होता है। पढ़िए 7 नंबर।
जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता।
कर्म विरण से बद्धते, बद्ध नहीं होता वो। तो यहाँ पर एक तो सर्वभूतात्म भूतात्मा, भूतात्मा सर्व भूतात्मा भूतात्मा, अर्थात कि जो सबके प्रति दयालु है, सबके प्रति। उसके तीन सिम्टम, एक तो विशुद्ध आत्मा जिसकी बुद्धि शुद्ध हुई है, विशुद्ध आत्मा। दूसरा है विजित आत्मा, जो जितेंद्रिय और विजित आत्मा दो है ना, तो सेकंड विजित आत्मा विश्वनाथ जगत ठाकुर कहते हैं कि जो सेल्फ कंट्रोल है, और जितेंद्रिय क्या है, जिसने अपनी इंद्रियों को पराभूत कर लिया है, वश में कर लिया है। तो ये 3 लक्षण उसके होते हैं विशुद्ध आत्मा के, ये भक्त के। और उसमें भी उसका विशेष करके जो विशुद्ध आत्मा, उसके विषय में प्रभुपाद कहते हैं प्योरिफाइड इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कि वो निरंतर कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ होता है, connected with Krishna. जैसे प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहे थे कि मेरे सारे प्रोग्राम भगवान के हाथ में होते हैं, भगवान की योजना बनाते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद इस चीज को बोलते रहते थे, और प्रभुपाद खुद शेयर किया था ये बात को कि मेरे गुरु महाराज कहते थे कि अगर कृष्ण का इच्छा होगा तो मैं वहां पर आऊंगा और प्रोग्राम करूंगा। इसी तरह से हर बात में ऐसा कहते थे, अगर कृष्ण का इच्छा होगा तो मैं, ही वॉज रियली कनेक्टेड विद कृष्ण इन ऑल द सर्कमस्टांसेस निरंतर। जब मैं 13-14 साल का था, दीक्षा ने आना लिया था, और उस समय तो ईमेल जैसा कोई सिस्टम था नहीं, ये कंप्यूटर ईमेल वगैरह सेलफोन तो बाद में आया। हमारे टाइम पे सेलफोन बहुत ही कम लोग यूज करते थे, रेयर केस में। पेजर होते थे पहले, पता है आपको, पेजर होते थे, और पेजर और तो कोई व्यवहार नहीं होता था। तो हम हर महीने गुरुजी को पत्र लिखते थे, हर महीने। तो उस समय ईमेल तो था नहीं, तो ईमेल के बदले हैंड रिटन पत्र होते थे, हाथ से लिख करके भेजते थे। तो हाथ से लिख करके, और महाराज का रिप्लाई आता था वो टाइप किया हुआ आता था। तो जो फर्स्ट लेटर जो आंसर आया था महाराज को, फॉर्चुनेटली हर एक महीने आंसर आता था। तो आंसर आया तो उस आंसर में मैं पहली लाइन में कहीं लिखा हुआ था, इफ कृष्ण डिजायर सो, नेक्स्ट पैराग्राफ में कृष्ण विलिंग, ऐसा सब लिखा हुआ था। सो मेरे लिए शब्द नए थे, कृष्ण विलिंग। आई थॉट कि सो मच कनेक्टेड टू कृष्ण, क्यों, कृष्ण विलिंग मीन्स कृष्णा यदि चाहे तो, कृष्ण यदि चाहे तो, ऑलवेज कृष्ण यदि चाहे तो। तो ये है शुद्धात्मा का लक्षण। सो ये तीन चीज क्वालिटी होती है उस व्यक्ति के अंदर, तो वो सबके साथ एक नहीं बन जाता, किंतु सब उसको प्रिय हो जाते हैं। एवरीवन ही लाइक्स एवरीवन। मायावादी लोग क्या सोचते हैं, वो एक सब एक आत्मा, सब एक साथ बन जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि अर्जुन खड़ा है युद्ध भूमि के ऊपर, और वहां पर युद्ध भूमि पर खड़े हुए व्यक्ति को भला उसको कैसे कोई पसंद करेगा, आई मीन हाउ ही कैन लाइक एवरीवन। वो दुर्योधन को कैसे लाइक करेगा, वो दुशासन को कैसे लाइक कर सकता है। तो ऐसे लोगों को किस तरह से, वो सबको तो उसको मारने के लिए खड़ा हुआ है, हाउ ही कैन लाइक एवरीवन। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, समबडी कैन रीड, अर्जुन वॉज ओनली सुपरफिशियली ऑफेंसिव बिकॉज हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन द सेकंड चैप्टर, ऑल द सिंबल पर्सन। यस, somebody can read. On the battlefield would continue to live individually as the soul cannot be slain.
वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने आप स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया, वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनता।
यस, तो यहाँ पर जो बताया इसका, ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, ये एक्चुअल युद्ध कर रहा है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं है कि अर्जुन युद्ध कर रहा है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि अर्जुन कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा है। वो युद्ध कर रहा है वो तो सेकेंडरी है, वो आदेश का पालन कर रहा है वो प्राइमरी है, फर्स्ट थिंग वो है। अभी वो आदेश में युद्ध करना युद्ध नहीं करना ये सेकेंडरी बात है। युद्ध करना भी कृष्ण बोले करना है तो करना है, बोले नहीं करना है तो नहीं करना है। शिखंडी को साथ में खड़ा रखो, भीष्म को मारना है तो साथ में खड़ा रख दे, उसमें गए तो पीछे से वार करो अर्जुन, अरे पिंछी सेवा, क्षत्रिय हूं मैं, कैसे कर सकता हूँ पिंछी सेवा? नहीं, मैंने बोला ना करो, तो इसलिए कृष्ण का आदेश का पालन करा, वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन युद्ध करना कृष्ण का आदेश था, इस तो युद्ध कर रहे हैं। बीच युद्ध रणभूमि में कृष्ण बोले भाई हो गया तुम्हारा काम, गेट आउट, तो चला जाता। उसका उद्देश्य युद्ध करना नहीं था, उसका उद्देश्य था कृष्ण के आदेश का पालन करना। तो इस तरह से हमारा उसको सीखना चाहिए, हम सब भक्तों को। हमारा भक्ति उसी को बोलते हैं कि आज आप जो सेवा कर रहे हो, गुरुजी ने बोला बस ये बंद कर दो, अब ये करो। लेकिन गुरुजी अभी तो मैंने अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो ये मैं प्रयास करूंगा, इससे ये परिणाम आएगा, ये फायदा होगा, इसमें ये भक्त, इतने लोग भक्त बनेंगे, ये होगा। गुरुजी ने कहा ये बंद कर दो, ये कर लो, खत्म। तो ये द आइडिया इज फॉलो व्हाट कृष्ण सेज, डोंट फॉलो दैट द वे अर्जुन डिड। सो अभी आने वाले दो श्लोकों में कृष्ण जितेंद्रिय के विषय में बताएंगे कि किस तरह से वो अपने क्रियाओं को किस तरह से वश में रखता है। पढ़िए।
दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सुनते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रिया अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है।
यस। तो वो व्यक्ति हालांकि शरीर में होता है लेकिन नहीं होने के बराबर होता है, वो शरीर की भावना में फंसा नहीं रहता, खाता है बैठता है सोता है, वो सब में वो निरंतर कृष्ण के चिंतन में रहता है, वो शरीर की भावना से पर होता है। मिस आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीथिंग। मेरी प्रॉब्लम सब वहीं से शुरू होती है कि जब मैं मेरी पहचान इस शरीर के साथ करता हूं, मेरी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि मैं ये सोचता हूं कि ये शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज मेरी है और मैं ये शरीर हूं। कल एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा था कि ऐसा कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ लोग हमारे आसपास में, पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, मित्र वगैरह भौतिक रूप से बहुत ही सुखी है, तो मैं तो माला का जप भी करता हूँ लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ, मुझे बीमारी है, ये समस्या है, वो समस्या है, घर के झगड़े, ये वो, यू नो, और वो जो पड़ोसी है ये तो बेचारा, उसको कोई समस्या नहीं है, भक्ति वक्ति कुछ करता नहीं, एक नंबर का भोगवादी है, फिर भी एकदम सुखी है। तो मैंने उनका एग्जाम्पल दे रहा था कि सुख की परिभाषा ही नहीं पता आपको, सुख किसे कहते हैं। इन सब चीजों से मुक्ति प्राप्त करना ये सुख है, ये सुख को केवल अज्ञानी व्यक्ति सुख मानते हैं। अगर आप बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहे हो और आप इसको एंजॉय कर रहे हो कि देखो मैं कितना स्पीड में गाड़ी चला रहा हूं, तो आसपास के लोग जो अज्ञानी हो गए वो बेचारा सोचेगा कितना तेजी से गाड़ी चला रहे हो, कितना सुखी आदमी है। लेकिन सामने उस अज्ञानी व्यक्ति है जो जिसको नॉलेज है, उसको पता है कि भैया तू जितना तेजी से जाएगा आगे खाई है, वहां गिरने वाला है तू, देखो। तो उस व्यक्ति के प्रति तो दया आएगी ना कि ये तो कितना मूर्ख है, भाग रहा है, उसको पता नहीं आ गया कि खाई है, गड्ढे में गिरने वाला है तू। तो इसलिए जब तक व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं शरीर हूं, तब तक उसका समस्या रहेगा, सब प्रकार की प्रॉब्लम उसकी रहेगी। और ये आनंद भोग करने की जो इच्छा है ना, एंजॉयिंग मूड, आजकल तो मैं देखा भक्त लोग भी ऐसा बोलते हैं कि जो नए नए भक्त हैं वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप किसी यात्रा में जाते हो या आप किसी किसी स्थान कीर्तन फेस्टिवल में हो, तो ओ यू आर सो फॉर्चुनेट, एंजॉय। यात्रा में प्रभु जी हजारों भक्त हैं, ठीक है, वेरी नाइस, एंजॉय। बट हमारे भक्त लोग कहते हैं कि ये एंजॉय वाली जो मेंटालिटी है ना, वही गलत है। एंजॉय तो एक ही है, कृष्ण। हम तो सब सेवा करते हैं और हमारा अपना हृदय स्वच्छ करते हैं, इसमें एंजॉय करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कृष्ण भक्ति में आनंद है, वो दिव्य आनंद, वो अपने आप आता है। मतलब आइडिया इज वी आर नॉट सपोज टू एंजॉय, वी आर सपोज टू सर्व। हम सेवा करने के लिए मंदिर में जुड़े, मंदिर में जाने का अर्थ ये नहीं कि प्रभु जी दो चपाटी कमाई थी मेरे पास, आई एम हियर फॉर एंजॉयमेंट। ये गलत है, आपकी सिस्टम बेकार है, आप सब यू नो आपका सब मैनेजमेंट एकदम बेकार है, ये है वो है। भाई मैं आया हूँ, मुझे यहाँ पर कोई एंजॉयमेंट नहीं दिया, यू नो आई एम जस्ट सेइंग ऑफ दोस पीपल। मैं उन लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ कि जो एंजॉयमेंट की भावना से मंदिर आते हैं, और जबकि हमें मंदिर आना चाहिए सेवा की भावना के लिए। मंदिर क्या, आप अतिथि नहीं है मंदिर में, आप होस्ट है, ये मंदिर आपका है। मंदिर किसी के स्वामी का, कोई प्रेसिडेंट का, इसका नहीं है, ये मंदिर आप सब भक्तों का है। और जब आप मंदिर आते हो तो आपका भाव ये रहना चाहिए कि ये हमारे घर में हम है और लोग आते हैं हमारे घर में। आपके घर पे कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या करते हो? अगर आपके पास केवल दो ही लड्डू बचे हैं तो आप क्या करते हो? उसको दो लोग आए तो आप उसको एक एक लड्डू दे देते हो। कोई पूछेगा आपके लिए ना, है ना मेरे पास, पड़ा है अंदर, होता है ना ऐसा कई बार आप करते हो, राइट? हालांकि होता नहीं कुछ, बुखार रहता है वो, क्यों? क्योंकि घर में है ना, आप घर में ऐसा व्यवहार होता है आपका कि आपको सामने वाले को पता नहीं पड़ता कि ये व्यक्ति भूखा है, वो आपको सेवा करने की भावना है, तो फिर मंदिर में ऐसा क्यों नहीं? मंदिर क्या अलग है, वो तो भगवान का घर है, आपका घर तो छोटा है, भगवान का घर तो बड़ा है। सो व्हाई डोंट वी थिंक कृष्णा एज आवर ओन एंड हिज टेम्पल एज आवर ओन हाउस। तो ये एंजॉयमेंट स्पिरिट से हमें निकलना चाहिए। हम यहाँ पर भोग करने के लिए नहीं आए, हम भगवान की सेवा करने के लिए आए। सो नेक्स्ट श्लोक में, इस श्लोक में भगवान ने बताया अलग अलग इंद्रियों के कार्यों को, लेकिन अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस प्रकार का जो अनासक्त व्यक्ति है उसके कर्मों के कोई पाप का परिणाम आते हैं क्या? जैसे आप खाओगे तो उसका पाप लगता है, लेकिन भगवान का भक्त खाता है तो उसको पाप लगता है कि नहीं लगता है? तो इस प्रकार का प्रश्न है, ये पढ़िए।
जो मनुष्य कर्म फल परमेश्वर ने समर्पित करीने आसक्त रही थईने पोतानुं कर्तव्य कर्म करे छे, जे તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પર્શ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મથી અલિપ્ત રહે છે।
હા, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के सेवा में जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता है। यहाँ पर कमल पत्र का एग्जाम्पल दिया है, वो जल के भीतर होता है लेकिन बिल्कुल सूखा है, जल को स्पर्श नहीं करता वो, राइट? वो कीचड़ में होता है लेकिन फिर भी कमल है, लोग उसको प्राप्त करने के लिए अंदर भी आएंगे कीचड़ में, इट्स सो वैल्यूएबल, लेकिन वो कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है। इस तरह से भक्त संसार में होते हैं, आप बता रहे थे ना, भक्त संसार में होते हैं लेकिन उसको स्पर्श नहीं होता उसका। इवन दो इन मिड्स ऑफ सो मेनी मटेरियलिस्टिक, हाँ ये हो सकता है कि सब भक्तों की आध्यात्मिक शक्ति कम ज्यादा हो सकती है, तो इसके कारण कुछ वातावरण में हमें हमारे लिए रिस्क होता है और कुछ वातावरण में हम संभल पाते हैं, राइट? लेकिन जो भक्ति में स्थिर है, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसने अपने सारे कर्मों के परिणाम भगवान को दे दिए हैं, उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है। इंद्र यज्ञ मत करो। अरे भाई इतने इतने सालों से हमारे पुरखों से परंपरा चली आ रही है, तो मैं नंद भी कर रहे थे, नंद के पिताजी क्या था परजन्य, परजन्य महाराज भी करते थे, ये सब लोग ये इंद्र यज्ञ कर रहे थे और कृष्ण बोले इंद्र यज्ञ मत करो, बंद कर दिया इंद्र यज्ञ, कृष्ण को समर्पण कर दिया। और बारिश आई तो किसी ने ऐसा नहीं कहा ये नंद सठिया गया है पागल है, जो नंद महाराज ऐसा थे नहीं पहले, पता नहीं क्या हो गया नंद महाराज को, ये बच्चे ने बोल दिया यज्ञ बंद कर दो तो बंद कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। देखो अभी बारिश इंद्र ने कितना बारिश बरसाया गया, ऐसा नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो लोग जाकर के कृष्ण को कहे कि कृष्ण तुमने कहा कि इंद्र यज्ञ बंद कर दो तो बंद कर दिया, अब ये बारिश आई है तो तुम संभालो, तुम इससे रक्षा कराओ हमारी, ये भाव होना चाहिए कि अगर जब मैंने कृष्ण के आदेश का पालन किया परिणाम कौन संभालेगा, भगवान संभालेगा परिणाम, सीधी सी बात है उसका। तो इसलिए भक्त निश्चिंत होता है उसको कर्म का परिणाम, और वो सफल भी होता है, आवश्यकता पड़ने पर गिरिराज जी को भी उठा लेंगे, गोवर्धन को भी उठा लेंगे, चिंता मत करो भगवान ने कहा तुमने मेरे आदेश का पालन किया है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आवश्यकता होगी तो गोवर्धन भी उठा लूंगा। रोज गोवर्धन को देखते थे ब्रजवासी, कभी मन में सोचा भी नहीं था कि इसको उठा भी सकता है कोई है ना, अब अगर आप रोज यहाँ से निकलते हो पास में, आपको कोई अंदाजा नहीं हो सकता है कि ये बिल्डिंग को उठा भी सकता है कोई, लेकिन उठा लिया भगवान ने गोवर्धन पर्वत को। तो इसलिए उसको किसी प्रकार का कोई सिंफुल रिएक्शन नहीं रहता उस व्यक्ति को। कमल
पद्म पत्र
में वाम बसी। सो इसलिए कृष्ण भक्त जो होते हैं उसके लिए सारा संसार को बहुत ही ऊपर के दृष्टि से देखता है। मैं कई बार भक्तों को कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर बैठे हो इस कमरे में, तो आपके लिए आपका दृष्टिकोण, आप कितनी चीज को देख सकते हो, चार दीवार देख सकते हो, घर के बाहर कुछ खिड़कियां दरवाजे में से कुछ देख लिया है ना, उतना देख सकते हो। आपको अगर थर्ड फ्लोर 10th फ्लोर पर ले गया कोई, वहां से अगर आपने टेरेस से देखा तो आपको कई चीज देखने को मिलेगी है ना, आपकी दृष्टि विस्तृत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एयरप्लेन में डाल दिया और जब एयरप्लेन टेक ऑफ करेगा तो आपको कैसा दिखाई देता है ना, शुरुआत में आप ऊपर जाते हो धीरे 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 तो कैसा दिखाई देता है आपको, है ना, पूरा शहर दिखाई देता है इधर, और वहां पर इसके ऊपर पर गया था एम्पायर स्टेट के ऊपर, ऊपर तो ऊपर से पूरा न्यूयॉर्क सिटी यू कैन सी एट वन प्लेस, एक ही जगह पर खड़े रहकर के आप पूरे न्यूयॉर्क सिटी को देख सकते हो। लेकिन व्हेन यू गो इवन फर्दर, और भी अगर आप ऊपर जाओ तो आपको क्या, आपका दृष्टि विस्तृत होती जाती है। तो इस तरह से भक्तों के लिए ये पूरा संसार को वो एक ही जगह पर बैठ करके सारे संसार को देख सकता है। आइडिया इज कि उसके लिए सब कुछ जल के समान है और वो बिल्कुल कमल की भांति, उसको कुछ स्पर्श नहीं करता, और सबकी जिसको ज्ञानी है जो कृष्ण भक्त है वो जिसने शास्त्रों का अभ्यास किया है वो सबकी वीकनेस जानता है, सबकी प्रॉब्लम समझता है, सबका आकर्षण क्या है वो जानता है, ये सारी चीजों को वो ध्यान में, उसको ध्यान में होता है, उसका एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्त है और जुड़ा हुआ है भगवान की सेवा में, तो इसलिए उसको कुछ नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद इसको बोलते हैं ये कृष्ण भक्ति जो है वो एंटीसेप्टिक है। अगर आपको कोई अच्छी दवाई लेकर के आप अस्पताल में भी जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, राइट? जैसे आपका भी वो फ्लू लगा हुआ है ना सब जगह अहमदाबाद में, कौन सा इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू या ऐसा कुछ है ना वो फैला हुआ है, तो डॉक्टर लोग उनको ट्रीट करना होता है पेशेंट्स को उनके पास, तो उनकी लाइफ का रिस्क नहीं होता है क्या? उनका रिस्क होता है, लेकिन वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके जाते हैं, सब प्रकार की यू नो मास्क वगैरह ये लगा कर देते हैं, जो दवाई लेनी पड़ती है वो सब ले लेते हैं, तो अगर वो जाएंगे भी फिर उनको कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आपकी कृष्ण भक्ति को अगर आपने मजबूत बना दिया, 16 माला ढंग से रोज करते हो, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हो, भक्तों की संगति में निरंतर रहते हो, फिर आपको उठा करके डाल दो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के ऊपर, कुछ नहीं होने वाला, इट वॉन्ट हैपन एनीथिंग, आप माया से आकर्षित नहीं हो पाएंगे। क्यों? एंटीसेप्टिक है, आपको कुछ होने होगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप कमजोर है, आपने दवाई ववाई ठीक से लिया नहीं है, भक्ति का ढंग से किया नहीं, तो आप थोड़ी संगति में जाएंगे तो एक दो दिन प्रभाव रहेगा इसका। जाके आओगे क्या, कहाँ जाके आए तुम? बोले 2 दिन शादी में था। अच्छा, इसलिए? तो ये हो सकता है ऐसा, अगर हम कमजोर है तो ये प्रभाव रहेगा। मायावादी लोग क्या करते हैं, मायावादी लोग सब कुछ त्याग देते हैं, फिर बाद में चपाटी ढूंढते रहते सब जगह भिखारी की तरह, यहाँ पर कहीं से कुछ सुख मिल जाए। भगवान के भक्तों को ऐसा नहीं होता। सो अगर ऐसा हो, समझ लो इसको निष्काम कर्म योग बोलते हैं, सारे कर्मों के फल को भगवान को दे देना, दिस इज निष्काम कर्म योग। अगर कोई व्यक्ति वो शरीर जानता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है और वो अनासक्त भी है, तो फिर वो कर्म क्यों करता है? अगर ये सारे गुण है उसके अंदर, वो पद्म पत्र की तरह है, तो वो फिर कर्म क्यों करता है? तो फिर भगवान इसका आंसर देते आगे, क्या पढ़िए।
योगी
जनाशक्ति
रहित होकर शरीर
मन
बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं।
हाँ, प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कौन सा? वो लोग निरंतर केवल शुद्ध विशुद्धि बनने के लिए, शुद्ध अवस्था के लिए कर्म करते हैं। अर्थात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जगह कहते हैं, although one's mind may sometimes be distracted while making offerings of oblation such as indriya swaha, still such a person's senses are capable acting for the purification of atma for the sake of purifying the mind। अर्थात जो कृष्ण भक्त होता है या जो ज्ञानी या ये जो निष्काम कर्म योगी होते हैं, बलदेव विद्याभूषण भी कहते हैं, वो अपने मन इंद्रिय और कर्मों को, मन बुद्धि और इंद्रियों को इसलिए करता है कर्म में नियुक्त, जिससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो, उसका एग्जिस्टेंस शुद्ध हो, प्योरिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली वो एक लेक्चर दे रहे थे वैष्णव महाराज लास्ट संडे, तो उन्होंने एग्जाम्पल बताया था कि गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, तो बीज जो है वो तो सीड फॉर्म में है, एंड कृपा जो है वो तो बीज सीड फॉर्म में है, लेकिन उसके लिए उपजाऊ जमीन भी तो चाहिए। जमीन ढंग से आप किसी भी आप टेरेस के ऊपर बीज डाल के पानी डालोगे थोड़ी उसमें से कुछ उगेगा, तो आपको जमीन भी तो चाहिए, और जमीन भी हमारी इतनी स्टोन वाली बंजर जमीन है कि उसमें कुछ उगे ऐसा है नहीं, तो इसको पहले थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको काटना तोड़ना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तब जाके वो उसमें कुछ पानी डालोगे तो कुछ उगेगा। तो साधन भक्ति जो है वो प्रिपरेशन है, उस भक्ति लता उस सीड को पानी डालने का परिणाम तब मिलेगा, पहले आपको सुबह 4:30 बजे उठ करके मंगला आरती करना पड़ेगा, 216 माला का जप करना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, भागवत क्लास में बैठना पड़ेगा, तो ये सब करना पड़ेगा। प्रभु जी तो बड़ा कठिन काम है, भागवत क्लास में बैठ जाओ बहुत मुश्किल काम है। अगर आपके भागवत क्लास में अगर कोई नहीं सोया तो आप द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है। इसलिए बड़ी तपस्या लगती है भागवत क्लास में बैठना, रोज गुरु पूजा में जाना, माला का जप करना, एकादशी के दिन 25 माला जप करना, ऐसा लगता है कि इट्स टू मच, बट दिस इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इससे हमारा अस्तित्व जो है वो शुद्ध हो सकता है। सो इसके विषय में अगर आप ध्यान से देखो तो एक कर्म होता है शुद्धिकरण के लिए जो भक्त लोग करते हैं, और दूसरा कर्म होता है भोग करने के लिए। तो हमारा कर्म और भौतिकवादी के कर्म में ये अंतर है। हम जो कर्म करते हैं वो हमारे अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए, और भोगवादी लोग जो कर्म करते हैं वो केवल भोग करने के लिए। तो इस प्रकार से वो लोग अपने शरीर को संतुष्ट करना चाहते हैं और हम हमारे आत्मा को संतुष्ट करना चाहते हैं। इसलिए भक्ति आत्मा तभी संतुष्ट हो सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा है सवई धर्मां परोपंसाम, ये तो भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज भगवान के हृदय सेवा में कोई व्यक्ति जुड़ता है भक्ति में, हेतु की भक्ति होनी चाहिए। उसमें कोई हेतु नहीं, क्यों कर रहे हो, ये चीज प्राप्त करना, वो चीज प्राप्त करना है, तब तो तुम्हारा आत्मा प्रसिद्ध नहीं होगा, तब तुम्हारा आत्मा संतोष नहीं होगा, अगेन भौतिक इच्छा आ गई। हेतु नहीं होना चाहिए इसके पीछे, हेतु एक ही है, कृष्ण को प्रसन्न करना, एक ही हेतु है, गुरु को प्रसन्न करना, और कोई हेतु नहीं। तो हेतु के बिना की जो भक्ति है सुनने में तो बड़ा आसान है, लेकिन जब आप भक्ति करते हो तब पता पड़ता है कि इसके पीछे हेतु है या नहीं है। आप करना चाहते, आप जो करते हो उसके पीछे क्या आप लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहते हो, कुछ यू नो कोई आपको डोनेशन दे दे ऐसा चाहते हो, या फिर आपको कोई प्रणाम करे, कोई रिस्पेक्ट करे, आपको आपके काउंसिलर बन जाए, आप उसके काउंसिलर बन जाओ, ये सब चाहते हो, क्या चाहते हो आप, ये सब भाव मन में हो सकते हैं। तो इसलिए अहेतु की हेतु नहीं होना चाहिए। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का अर्थ होता है पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम। ऐसा नहीं कि प्रभु जो भक्त तो करता हूं मैं, सुबह 2 घंटा माला जब तो कर लिया, दैट्स इट, फिनिश, आज का कोटा खत्म, अब कल कर लेंगे और क्या, अब तो मैं जो करना चाहूं कर सकता हूं, ये नहीं चलेगा। इससे क्या होगा कि आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा, अहेतु की अप्रतिहता। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति करता है, सेवा में जुटता है, उस व्यक्ति का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। सो भक्ति में ये विशेष स्पेशल क्वालिटी है कि वो कर्म भी भगवान के चरण में अर्पण करता है, केवल कर्म के फल नहीं। और निष्काम कर्म योग में क्या होता है, कर्म करता रहता है लेकिन बाद में अभी परिणाम आ गया, आप क्या करें, दे दो भगवान को, वो निष्काम कर्म योग में, कर्म में आ सकती लेकिन फल में ना सकती। और भक्त में कर्म में भी आना सकती और फल में भी आना सकती, ये है स्पेशल क्वालिटी। सो या
अप्रतिहता 24 आवर्स, कैसे, हाउ डू वी अटेन दैट, कैसे है, मतलब प्रैक्टिस करें या?
यस, तो प्रभुपाद कहते थे 24 आवर्स ऑलवेज, 24 आवर्स। तो एक भक्त ने प्रभुपाद प्रश्न पूछा, 24 आवर क्या होता है, आई मीन तो मिस क्या सोना बंद हो जाएगा, सोने का नहीं, फिर क्या, रेस्ट नहीं होता है भक्त के लाइफ में. सो प्रभुपाद ने कहा व्हेन यू वर्क हार्ड फॉर कृष्णा, जब आप कृष्ण के लिए बहुत संघर्ष करते हो तब आप इतने थक जाते हो कि आपको सोना नहीं पड़ता, आप सो जाते हो. एंड दैट यू नो रेस्ट, वो जो रेस्ट है दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो कृष्ण भक्ति है. इसका अर्थ ये नहीं कि आप तमोगुण में हो और आपको बैठे बैठे भी नींद आ जाती है तो प्रभु ये तो कृष्ण भक्ति हो गई. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू, क्या कहा जाता है, 24 घंटे होते हैं ना भक्त के पास, तो 8 घंटे शरीर के लिए जिसमें आपका सोना नहाना खाना सब कुछ आ गया, कपड़े धोना सब कुछ आ गया, 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे आत्मा के लिए जिसमें मॉर्निंग प्रोग्राम 4:30 बजे उठकर माला मंगला आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम भागवत क्लास, प्रभुपाद 2 घंटा जप करना, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना, ये सब 8 घंटे आत्मा के लिए, 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे आत्मा के लिए. अभी कितने बचे? 8 घंटे और बचे, और बाकी के जो 8 घंटे है वो सेवा करने के लिए. दैट्स फॉर सेवा, दैट्स फॉर सर्विस. जो फुल टाइम ब्रह्मचारी है उनको टेम्पल में सेवा करना है, जो गृहस्थ भक्त है उनको फैमिली मेंटेनेंस करना है. ये हमारा होना चाहिए सेटअप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज भक्ति, दिस इज 24 आवर्स. सो अभी नेक्स्ट कृष्ण कंपेयर करते हैं आसक्त के अनासक्त के साथ की कंपैरिजन नेक्स्ट में करते हैं. भगवान वो पढ़िए.
निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मों पर मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है वो जो अपने कर्म का फलकामी है वह बन जाता है.
हाँ, भगवान ने सार प्रस्तुत कर दिया यहाँ पर समरी कि जो मुझे अर्पण करता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. हाँ, लेकिन जो कर्म को भोग करना चाहता है वो व्यक्ति फंसेगा. दिस इज द प्रॉब्लम. द स्टडी डिवोटेड सोल एंड रेगुलेटेड पीस बिकॉज यू ऑफर द भौतिक संसार में कहीं पर शांति नहीं मिलेगी. देयर इज नो पीस इन द मटेरियल वर्ल्ड एट ऑल. जब तक इच्छा है मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. जब तक भौतिक इच्छा है, जब तक थोड़ी भी इच्छा है, थोड़ी भोग करने की इच्छा, इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा, है ना, ये सब प्रकार की जो इच्छा है, तो जब तक भौतिक इच्छा, इसको भौतिक इच्छा ही बोलते हैं. यहां तक कि हो सकता है भक्ति में आगे बढ़ गए हो लेकिन फिर भी ये तो सटल चीज है ना, तो ये सब भौतिक इच्छा में आ जाता है. तो ये जब तक भौतिक इच्छा रहेगी तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती, मन शांत नहीं रह सकता, फिर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, यू नो पजल रहते हैं. क्या बोलते हैं उसको, सेकंड चैप्टर में बोला है निमित्तानी विपरीतानी. मैं चाहता हूं कुछ और होता है कुछ और. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भौतिक इच्छा अभी भी तुम्हारे हृदय में है. जब आप पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत आश्रित हो जाते हो तो आप कमरे में अपने कमरे में बैठे हो और सारा चीज अपने, जैसे कोई धनवान व्यक्ति होता है वो अपने कमरे में बैठा होता है पूरी दुनिया चलती है उससे. और इस तरह से जब आप कृष्ण भक्ति में जुड़ते हो, आप पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हो तो सारे कार्य कृष्ण अपने आप करवा देते हैं आपसे, आपको पता भी नहीं पड़ता नहीं ये कार्य मैंने कैसे किया, मुझमें तो ऐसी योग्यता है नहीं, कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम पूर्ण रूप से भगवान के शरण में थे और तुमने गुरु और कृष्ण के आदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया, आदेश का पालन ही करने का प्रयास किया। और वो आदेश का पालन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, उसको चेक करने के लिए आपने वरिष्ठ भक्तों का सहायता भी लिया कि मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो यू आर सक्सेसफुल। यस,
कभी आपने जो बोला कभी मतलब हम लोग जो बिल्कुल भी विपरीत है, हम लोग जो भक्ति में बिल्कुल भी मतलब भी स्ट्रगलिंग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हमारे काम ऐसे स्मूथली हो जाते हैं।
Yes.
तो ऐसे क्यों होता है? हाउ डज इट हैपन?
आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन।
मतलब जैसे आपने बोला कि जैसे हम गुरु के और भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो ये होता है, पर हम तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी होता है कभी कभी ऐसा, तो ऐसे
yes, so, you know, इसको बोलते क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन वर्जन।
सॉरी,
एवोल्यूशन डेमो वर्जन। जब आप कृष्ण भक्ति में जुड़ते हो तो आपको एक थोड़ा सा डेमो कृष्ण देते हैं कि देखो तुम इतना करते हो तो भी इतना फायदा हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाओगे तो क्या होगा, कैसा चमत्कार हो जाएगा। इसलिए अगर हम पूर्ण रूप से नहीं भी जुड़े हैं फिर भी हमारे काम सफल हो जाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि सफलता कृष्ण के कारण हुई है। हाँ, अगर आपका उद्देश्य सफल है, ऐसा नहीं कि अब मैं BMW मिल गया, वो देखो कृष्ण कितने कृपालु है मुझे, कृष्ण के कारण, वो दैट्स नॉट द रियल सफल। अगर आपका सफलता आध्यात्मिक है तो इसका मूल उद्देश्य कृष्णा के कारण ही हुआ। परसों में पढ़ रहा था चैतन्य चरितमृत में, इसमें प्रभुपाद इस चीज को बार बार बता रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष गुण है या उसके पास कोई विशेष सत्ता है, पावर है, जैसे नरेंद्र मोदी है या फिर कोई भक्त में है, कोई दीक्षा गुरु है, कोई GVC है या कोई या उसके पास कोई विशेष भक्ति है, प्रचार करने की भावना है, शरणागति है, सेवा करें, तो ये सबके विषय के पीछे आपको ये सोचना चाहिए कि वो उसको कृष्ण की स्पेशल कृपा प्राप्त हुई है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो जो श्रेष्ठ लोग हैं उन सबको मेरी कृपा के अंश मात्र मानो, मेरा प्रकाश मम तेजो अंश संभव, मेरा तेज उसके अंदर है इसलिए वो ये हो रहा है, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई भी सफल व्यक्ति के पीछे कृष्ण का हाथ होता ही है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। भौतिक रूप से सफल व्यक्ति के पीछे भी कृष्ण का हाथ है। क्यों कृष्ण का हाथ है? उसको कृष्ण ने परमिट किया तब जाके उसको ये हुआ, नहीं तो ये हो नहीं सकता था। और भक्त के हृदय में भी अगर आपको कोई आध्यात्मिक सफलता मिलती है, इमीडिएटली यू शुड थिंक ओ कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना ये हो नहीं सकता था। योग्यता विचारे किच्छु ना ही पाए, मैं अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन देखता हूं तो किच्छु ना ही पाए, मुझे कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? तुम्हारा करुणा सा, केवल हे गुरु महाराज आपकी कृपा ही सब जगह दिखाई दे रही है, इधर देखो आपकी कृपा, उधर देखो आपकी कृपा, इधर देखो सब जगह आपकी कृपा ही दिखाई दे रही है मुझे। तो दैट इज द मूड ऑफ द डिवोटीज। सो भक्त को वो शांत चित्त रहता है, कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहता है। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छाएं आसी निर्भर करिया। भक्तिवान ठाकुर कहते हैं कि निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, पहले बहुत ट्राई किया कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, अब सब फीका पड़ गया, पता पड़ गया मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, अब भरोसा उठ गया मुझ पे, मुझसे क्या हुआ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारा इच्छाएं आसी निर्भर रही, तुम्हारी इच्छा पर अब मैं निर्भर करने लगा हूँ कि कृष्णा तुम चाहो तो होगा, तुम चाहो तो नहीं होगा, तुम नहीं चाहो तो नहीं होगा। लेकिन हर चीज में कृष्ण पर अगर कोई व्यक्ति निर्भर रहता है तो वो कभी असफल हो सकता है क्या? जो निरंतर कृष्ण पर निर्भर रहता है और जो चीज उसको प्राप्त होती है उसके पर, उसको कृष्ण का आशीर्वाद मानकर थैंक यू कृष्ण, यू आर सो काइंड। तो नहीं, वो एक एग्जांपल है ना, आपको पता है कि राजा अकबर बीरबल बोलते कहीं राजा का मंत्री ने उसका अंगूठा कर गया तो बोले कि अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ। और राजा बोला अजीब आदमी है, यहाँ पर मेरा अंगूठा कट गया हुआ, मैं चिल्ला रहा हूँ, ये बोल रहा है अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ। तो उसको अरेस्ट करवा दिया, अरेस्ट किया तो बोले वो भी अच्छा हुआ, मैं पागल हो गया लगता है, अरेस्ट हो गया वो भी अच्छा हुआ। और बाद में फिर वो शिकार करने के लिए गया तो किसी ने पकड़ लिया राजा को, राजा को पकड़ लिया बलि चढ़ाने के लिए, देवी को, देवी को बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया तो उसको मारने ही वाले थे, खिलाया पिलाया सब नहाला धोला कर अच्छे कपड़े पहना करके रेडी कर दिया बलि के लिए, और जैसे ही उसके गले पे तलवार लगाने ही वाले थे और बोल दिया तो इसका हाथ कटा हुआ है, इसका अंगूठा टूटा हुआ है, ये बलि के लिए योग्य नहीं है, छोड़ दो इसे। वो खुश हो गया, हर्ष वापिस आके उसको बोला, वो मंत्री को बुलाओ, बोले कि तुमने कहा था कि मेरा अंगूठा कट गया तो अब मुझे पता पड़ा कि वो अच्छा क्यों हुआ, अच्छा हुआ मेरा अंगूठा कट गया तो, लेकिन ये नहीं पता पड़ा कि तुम्हें जेल में डालने से तुम्हारा क्या लाभ हुआ, क्या अच्छा हुआ। बोले सीधी सी बात है सरकार, और तुम मुझे भी साथ में लेकर गए हो तो मेरा तो कोई अंगूठा कटा नहीं है, तुम्हारी जगह मुझ में ही बलि लगा देते ये लोग। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए, नेवर कंप्लेन, भगवान के भक्त कंप्लेन नहीं करते, कृष्ण वाय दिस वाय दैट, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये कृष्ण ये आपके अनुकंपा है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमान, और वास्तव में जो मुझे, मैं जो सहन कर रहा हूं, मुझे जो कुछ प्राप्त हो रहा है ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम प्राप्त है। मैं कर्म करने के समय को देखा नहीं कि क्या कर्म कर रहा हूँ, जब भुगतने की बारी आई तो कंप्लेन शुरू हो गई कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, उस समय तो कुछ देखा नहीं था। तो जब मैं तो अभी कर्मों के अपना फल भुगत रहा हूँ, फिर भी आप इतने दयालु हो, आप बहुत ही कृपालु हो कि आप इसको कम करके दिया, सो मर्सीफुल। जैसे महाराज एग्जाम्पल देते आपको, आपने शायद कुछ ना था बैबल क्लास में गया था या शाम को गया था पता नहीं, वेरी नाइस एग्जाम्पल ये गए कि अगर आपके कर्मों के परिणाम के अनुसार आपको 5 किलो का कोई पत्थर आपके सिर पर गिरने वाला है, समझ लो तो क्या होने हो, क्या होगा, गिरेगा तो फट जाएगा, मर जाओगे आप, लेकिन 5 किलो का रुई भगवान आपके सिर पर डाल देंगे, 5 किलो तो सेम कर दिया ना, वही 5 किलो लेकिन अब रुई से आपको कुछ नहीं होगा, राइट। तो भगवान इतने दयालु है कि आपके कर्मों को कम कर देते हैं, इसलिए डोंट कनेक्ट इन दिस, इससे ये मत सोचिए कि ऐसा मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, टेक इट पॉजिटिवली कि कृष्ण जरूर मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं इसके पीछे, तो मुझे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि क्या सिखाना चाहते कृष्ण मुझे, सो आई शुड लर्न इट। सो ऋग्वाग वपुवीर विदधन नमस्ते, और इस तरह से वो हृदय मन बुद्धि वाणी सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर करके उनकी सेवा करने लगता है, ये आशा के साथ कि एक दिन तो कृष्ण कृपा करेंगे ना मुझ पर, भौतिक कृपा नहीं अध्यात्म कृपा, एक दिन तो मुझे अपनी शरण में लेंगे ना कृष्ण, उस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो उस व्यक्ति को फिर मुक्ति भक्ति तुरंत प्राप्त हो जाती है। सो ये है भक्त का लक्षण। सो टेक्स्ट नंबर 13 में पढ़िए, टेक्स्ट नंबर 13।
જ્યારે દેહધારી આ જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે ત્યારે તે નવ દ્વારવાળા ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે।
હા, નવ દ્વાર પૂરે દે, નવ દ્વારવાળા શરીર, આપને આપકો શહેર નહીં માનતા, વો यहाँ पर नौ द्वार वाली सिटी का एक एग्जांपल दिया है, you know, when the embodied living being controls his nature and mentally has all his action, he resides happily in the city of nine gates. You know, as he says, neither working nor causing work to be done. So Navdwar, to we know, right? Navdwar kaunse hai sharir ke? Exit entry, jahan jahan se hoti hai aapki body mein, you know, wo sare Navdwar hai. Do aankhe, do kaan, naak, muh, genital and janendriya aur guda. To ye hai Navdwar sharir ke. और इस नवद्वार वाले शहर में वो आत्मा रहता है. वो ये नहीं सोचता कि जैसे आप अहमदाबाद में रहते हो तो आप ये थोड़ी रहते कि कौन हो तुम और मैं अहमदाबाद हूँ. आप ऐसा थोड़ी सोचते हो. आप शहर में रहते हो लेकिन आप शहर नहीं हो. इस तरह से वो ही सेकंड चैप्टर वाली बात भगवान बता रहे हैं कि तुम शरीर में रहते हो लेकिन ये थोड़ी कोई सोचता है कि मैं ये शरीर हो गया. वो तो ऐसा ही सोचता है कि मैं आत्मा हूँ और इस भावना के साथ रहता है इसलिए उसको कुछ नहीं होता. उसको प्रॉब्लम नहीं होता. अगर आप अहमदाबाद शहर में रहते हो, यहाँ पर कहीं कुछ समय पहले कहीं पर फायर हो गया था, यहाँ पर कहीं पर दंगे हो गए थे, आपको क्या इससे, आपको क्या हुआ, आप तो कुछ नहीं हुआ, राइट? क्योंकि आप ये शरीर हो, आप ये शहर नहीं हो, इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ. द सेम वे आप शरीर में हो, आप आत्मा के रूप में, लेकिन अगर शरीर में कुछ होता है तो ओके, यू गेट सम पेन, आपको थोड़ा बहुत बाह्य रूप से थोड़ा बहुत कष्ट वगैरह होता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट कनेक्टिंग डायरेक्टली टू यू, आप आत्मा हो. इसलिए शरीर की जो चीज जो है उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते आप. कल एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि थोड़ा सा सिर दर्द होता है तो माला का जप नहीं होता. तो मैंने कहा कि ये सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी सर्दी, कभी जुखाम, ये तो होता रहेगा. तो क्या तुम खाना बंद कर देते हो, सोना बंद कर देते हो? अगर नहीं तो ये सब एक्सक्यूज केवल माला के लिए क्यों? जब हरि नाम की बात आती है तो पता नहीं आज तो अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, नॉट फीलिंग गुड. अब आपको सब उसी समय याद आया माला करने के टाइम पे कि आज अच्छा नहीं लग रहा है या? तो इसलिए शरीर की भावना पर स्थिर नहीं रहता वो. यस,
जैसे वो थर्ड चैप्टर में बताया इंद्रियाणी पराणया हो, तो मतलब जैसे आपने बताया कि शरीर में, वैसे हम शरीर नहीं है मगर जैसे शरीर में कुछ कष्ट होता है, थोड़ा बहुत कष्ट होता है, तो सिमिलरली बिकॉज मन जो है वो उससे ऊपर है, मन का जो कष्ट होता है वो उससे ज्यादा होता है, और ऐसे इट इज इन दिस वे.
वेल ऑब्वियसली शरीर के सब छह इंद्रियों में, इंद्रियों को जो राजा है वो मन है. इसलिए आपकी पांच इंद्रियों को कष्ट होगा, उससे अधिक कष्ट राजा को जब कष्ट होगा तब होगा. इंद्रियों का जो कष्ट है, अगर आपको कोई हाथ में लकड़ी किसी ने फ्रैक्चर वैक्चर हो गया तो आपको क्या पट्टी वट्टी आ जाएगी, एक आध दो पेन किलर ले लोगे, महीने दो महीने में ठीक हो जाओगे. लेकिन किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो वो तो साल भर, दो साल भर, दस साल, बीस साल लगे रहता है उसके, पड़ा रहता है हृदय के अंदर. इसलिए मेंटल जो हर्ट है वो तो बहुत गहरा होता है. कई लोग कहते हैं ऐसा, मन से मुझे दुखी मत करना, पर हाथ पांव तोड़ दो मेरे, पर मन से दुखी मत करना, आई कैन टॉलरेट दिस थिंग. इसलिए मन का जो दुख होता है वो अधिक होता है ऑब्वियसली. और हमें इसका कष्ट क्यों लगता है? क्योंकि हम डीप रूटेड ग्रॉस इग्नोरेंस में फंसे हुए. हम इतना दृढ़ रूप से ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, इसलिए कष्ट होता है. अन्यथा ये कष्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारी भावना बड़ी डीप रूटेड है. अभी कुछ भक्ति किया है तो अच्छा लग रहा है ना? अभी कुछ अच्छा लग रहा है, दवाई दो चार दिन दवाई लिया, अभी कुछ सालों से माला का जप हो रहा है तो अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए हम. जब पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे तो आपको डिस्चार्ज कर देंगे, ओके गेट आउट, नो प्रॉब्लम. अभी हम पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए, अभी हम साधन अवस्था में है. इसलिए सन्यासी होता है वो अपने आप को शरीर के साथ वो मानता नहीं, और साथ साथ ये वो ऐसा भी नहीं सोचता कि मुझे कुछ करने के लिए शेष नहीं है, वो जानता है कि अल्टीमेटली सफलता विफलता का मूल आधार तो भगवान पर है, उस उन पर पूरा डिपेंड करता है। इसलिए अपने सारे कर्म के फल जो है, परिणाम है, वो भगवान को ऑफर कर देता है। एम्बॉडी लिविंग कंट्रोल्स हिज नेचर एंड मेंटली रिनाउंस ऑल एक्शन सिंपली रिसाइड हैप्पीली इन द सिटी ऑफ नाइन गेट्स नीदर वर्किंग नॉर कॉजिंग वर्क टू बी डन। मटेरियल वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई ऐसा है नहीं कि अच्छी सिचुएशन हो, ही स्टेइंग देयर, बट ऐसा कोई अच्छी सिचुएशन वाली बात नहीं है। आपको लगेगा कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, शरीर की भावनाओं में ये सब होता है बॉडी प्लेटफॉर्म में, लेकिन सही में देखा जाए तो कौन बड़ा है कौन छोटा है एक्चुअली, तो कैसे माने, इसको कैसे काउंट करे कौन बड़ा है कौन छोटा है। उम्र से तो काउंट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल हरेश प्रभु, राइट, हर्ष ना, हरेश प्रभु, हाँ, आपका उम्र हो सकता है शायद 50 के आसपास, 50-55 के आसपास, राइट, वो आपका उम्र होगा, और आपकी बेटी का उम्र होगा शायद 20-25 के आसपास, राइट। तो 5 साल के पश्चात, अब 5 साल पहले कौन बड़ा था और कौन छोटा था, आप बड़े थे और ये छोटे थे, राइट, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 30 साल पहले क्या सिचुएशन थी?
30 साल पहले तो सिचुएशन चेंज थी, मतलब वो थी नहीं।
हाँ थी यार, सिचुएशन तो थी, जो सेकंड चैप्टर में भगवान बताते हैं। वो तो थी ना सेकंड चैप्टर, तब उनकी उम्र 85 इयर्स होगी, राइट, तब कौन बड़ा था, तब वो बड़े थे, राइट, इट 30 साल पहले, उस समय आप 20 साल उनकी उम्र के थे, राइट, जवान थे, लेकिन वो 85 के थी, राइट। तो इस तरह से बॉडीली जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई स्टडी कुछ नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, वो स्थिर नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे जीवन जी रहे, वो आपको फॉर्चुनेट वाली स्टोरी पता है, बताई थी शायद मैं कभी आपको, सौभाग्य से और दुर्भाग्य से वाली वो कथा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति था, वो जनरली वो क्या सोचते हैं एग्जाम्पल के रूप में, वो रहा था कि मैं एक मित्र के घर पे गया था, अनफॉर्चुनेटली वो घर पे नहीं था, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं दूसरे मित्र के घर पे गया, तो वो वहां पर था फॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसने दरवाजा खोला तो मेरा पांव फिसल गया, है ना, लेकिन फॉर्चुनेटली वो वहां पर था तो उसने मुझे पकड़ लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पांव में थोड़ी तो चोट आ गई, फिर लेकिन फॉर्चुनेटली वो इतना पेनफुल नहीं था, तो उसने मुझे बिठाया किसी चेयर पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चेयर का एक पैर टूटा हुआ था, तो मेरे कमर में चोट आ गई, लेकिन फॉर्चुनेटली उसका नेबर डॉक्टर था, तो उसने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने 200 रुपए चार्ज कर दिया, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ पैसे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता पड़ा कि मेरे पास केवल 100 ही रुपए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे मित्र ने कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपए दे देता हूँ, तुम इसका उपयोग करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जो 100 रुपए उसको वापस देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा लाइफ इस तरह से चलता है कि हमें मानव मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, अनफॉर्चुनेटली हमें शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली हम इसको के साथ जुड़ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुड़ने के बाद भी हम संभल नहीं पा रहे इतना अच्छे से, मन भागता रहता है, लेकिन फॉर्चुनेटली आपके पास भक्तों का संघ प्राप्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो संगत के हम पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे और उसका गुरु का आदेश का पालन नहीं कर पाए, लेकिन फॉर्चुनेटली आपके पास वैष्णव जो है आपको सुधार करने के लिए तैयार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका वो हम प्रभुपाद के ग्रंथों को भी नहीं पढ़ पा रहे और वो संघ में बोला कि ग्रंथों को पढ़ वो नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर भक्ति शास्त्री कोर्स अवेलेबल है। अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ बोलना नहीं है मुझे, बट दिस इज द प्रॉब्लम यू नो, दिस इज अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन बहुत संसार में निरंतर रहती है, राइट, निरंतर रहती है, लेकिन फॉर्चुनेटली हम भक्त में हैं, भक्ति में जुड़े हुए, राइट, सो दिस इज द सिचुएशन इन मटेरियल वर्ल्ड, सब जगह मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए लो, जान बुझ कर मैंने विष खाया, बट डोंट वरी फॉर्चुनेट गोलो के प्रेम धन हरि राम संकीर्तन, चिंता मत करो ये कृष्णा ने लेकर के आए उसको, सो दैट्स अवर सिचुएशन, सो एक श्लोक और ले लेते फिर देन वी स्टॉप। जो व्यक्ति इस तरह से नौ द्वार में रहता है फिर भी वो अनासक्त होकर के कर्म करता है, उसका किस चेतना के साथ वो कर्म करता है, सो दैट वी टॉक।
शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल ही की रचना करता है, यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है।
नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर, हु इज द डूअर, करता कौन, हु इज द डूअर, प्रकृति करती है, आत्मा करता है या परमात्मा करता है, कौन है करता है, इसकी चर्चा पहले किया था हमने, एक से छह तक बहुत बार ये चर्चा होती है, भगवद गीता में कई बार इस चीज की चर्चा होती है कि जो वास्तविक जो कर्म करते हैं उसका जिम्मेदार कौन है, प्रकृति है, मैं हूं या भगवान है, कौन है इसका जिम्मेदार, यही चर्चा प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं द टेम्पररी बॉडी ऑफ मटेरियल, समरी कैन डू इट, द टेम्पररी बॉडी और मटेरियल डवेलिंग प्लेस विच ऑब्टेन्स is the cause of varieties of activities and under resultant reactions.
जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है, ऐसे बद वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है, अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है, यूं ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है, जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही, वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है।
यहाँ पर ट्रांसलेशन में तीन चीज बताइए, क्या क्या नहीं कर रहा आत्मा, न न तीन बार हो ना, भगवान तीन बार न बताया, आत्मा ये नहीं करता, आत्मा ये नहीं करता, आत्मा ये नहीं करता, तो कौन सी तीन चीज है जो आत्मा नहीं करती है, पढ़िए। हाँ नहीं, अनुवाद में है, ट्रांसलेशन में है,
जब तक वो शरीर रूपी हो बाकी,
जब तक नहीं, ट्रांसलेशन में तीन चीज है,
ट्रांसलेशन
तो कर्म का सृजन करता है,
मिस नहीं करता, तीन चीज है ना, कौन सी है तीन चीज,
न तो कर्म का सृजन करता है,
एक चीज, पहली चीज है कि वो कर्मों का सृजन नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सेकंड,
न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है,
हाँ, वो कर्म को लोगों को बौद्धिक कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता, ठीक है तुम भी कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए, कर्म करना, ही डजंट डू दैट, तीसरा
नहीं कर्म फल की रचना करता है,
हाँ, और ना ही उसको उसके कर्म से वो फल का रचना करता है, क्योंकि वो कर्म को ऑलरेडी किसको अर्पण करके हुए, भगवान को अर्पण किए हुए, तो इसलिए वो कर्म फल की रचना भी नहीं करता, इसलिए वास्तव में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक रूप से देखा जाए तो। प्रकृति के माध्यम से ये सारे कार्य होते हैं, लेकिन इसके आगे आगे और दो चार श्लोक में इसकी चर्चा आने वाली है कि कौन वास्तविक करता है, भगवान करते हैं, परमात्मा हम करते हैं या प्रकृति करती है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में एक लेक्चर में न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया था, उसमें प्रभुपाद ये कहते थे कि हमारे सारे कर्म को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए। अगर हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या होगा, अगर आप शरणागत हो लेकिन आप प्रयास करते हो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, तो सबसे पहले तो जैसे कोई चोर है और चोर क्या कहेगा, हे प्रभु कुछ कोई एकाध घर बता दो ऐसा कोई जहां से चोरी कर सकता हूँ कोई अच्छा। तो भगवान उसको फर्स्ट पहले क्या कहेंगे, भगवान मत करो ये कार्य, डोंट डू दिस, ये अच्छा नहीं, इट्स नॉट गुड। लेकिन वो लगा रहता है, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, सो ओके ऑल राइट डू इट, लेकिन इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान बताए कि सर्वधर्मम प्रति मेरे मुझमें तुम अर्पण कर दो सब कुछ, तो तुम्हें इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब तुम खुद भोग करना चाहते हो तो फिर इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। कर्म संसार में कर्मों का जो परिणाम आता है, हर एक कर्म दोष युक्त होता है संसार में। उसका एक ही ऑप्शन है, उसको कृष्ण के अर्पण करो, अन्यथा उसका दोष का भागीदार तुम हो गए और दोष का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने एक्चुअली समझ लो, उसने चोर ने चोरी किया तो भगवान ने चोरी करने से रोका था उसको, लेकिन उसने चोरी करना इंसिस्ट किया तो भगवान ने उसको परमिशन दिया, अलाउ किया उसको चोरी करने दिया, क्योंकि भगवान किसी की स्वतंत्रता को रोकते नहीं है, किसी की इच्छा को ठोकते नहीं है। तो अगर कोई हाईकोर्ट का जज अगर ये कहता है कि इसको फांसी होना चाहिए, तो क्या वो उसका शत्रु था वो? नहीं, उसको तो पहले मना किया था, मत करो ये सब काम, ये तुम्हें इसका भुगतना पड़ेगा परिणाम। लेकिन उसने सुना नहीं, तो अब क्या करे, सरेंडर टू कृष्णा देन यू आर हैप्पी। सो आगे के कनेक्शन अच्छा, इज अ वेरी नाइस लोकस आर देयर, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट होपफुली नेक्स्ट विल फिनिश द चैप्टर। सो वी स्टॉप हियर, वी विल स्टॉप।